ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या 52। श्री यक्षावचुहु वयम् अनुचरमुखा कर्मभिस्ते मनोज्ञै स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् सतुजं परितापं तत्कृतं जानता ते नरहरुपनीतः पञ्चतां पञ्चविश। श्रीयक्षावचुः वयम् अनुचरमुख्या कर्मभिरस्ते मनोज्ञै स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् सतुजं परितापं तत्कृतं जानता ते नरहरुपनीतः पञ्चतां पञ्चविश। श्रीयक्षावचुः वयमनुचरमुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञै स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् सतुजं परितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश।
Thank you.
माता जी। श्री यक्षाऊचुहु। यक्ष लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, वयम हम अनुचर मुख्यः आपके प्रमुख सेवक, कर्म भी सेवाओं से ते तुम्हारे मनोज्ञ अत्यंत अच्छे लगने वाले ते वे यह इस समय दितिस्तुतेन दिति पुत्र कश्यप द्वारा प्रापिताः वलात लगाए गए वाहकत्वं कार्य के कार्य में सह वह तो लेकिन जन परतापम मनुष्य की दयनीय स्थिति तत्कृतम उसके द्वारा की गई जानता जानते हुए ते तुम्हारे द्वारा नरहर हे नृसिंह रूप उपनीता प्राप्त लाया गया है पंचतम मृत्यु को पंचविंश हे 25वें सिद्धांत अन्य 24 तत्वों के नियंत्रक। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गो श्री प्रभुपाद की। यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की है, 24 तत्वों के नियामक हम आपको वहाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं, फिर भी द्वितीय पुत्र कश्यप के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था। हे नृसिंह देव, आप ये जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है। तात्पर्य परमेश्वर 10 इंद्रियां 5 भौतिक तत्वों 5 इंद्रिय विषयों मन बुद्धि अहंकार तथा आत्मा के नियामक हैं, अतएव उन्हें पंचविंश अर्थात 25वां तत्व कहा गया है। यक्ष लोक के वासी समस्त सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु हिरण्यकश्यप उनसे पालकी ढोवाता था। सारा ब्रह्मांड हिरण्यकश्यप से संतप्त था, किंतु अब जब उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था तो सबों को शांति हुई। हिरण्यकश्यप की मृत्यु से यक्ष पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लग गए। इस तरह उन सबों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे प्रार्थना की। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातिशपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदोस्तं सर्वभूतदं मुनिमानितोऽस्मि। यः स्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्ष्णां तमोन्दम् संसारणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्यासूनप्यां गुरुं मुनीनाम्। हरे कृष्ण। तो बहुत बढ़िया विषय चल रहा है। परम भक्त प्रहलाद महाराज जी का जो आप विगत कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, इस सातवें अध्याय में, पीछे के सातवें अध्याय में प्रहलाद जी ने अपनी माँ के घर में क्या सीखा उसके बारे में बताया। प्रहलाद जी ने स्वयं बताया अपने अपने मित्रों से, और उनको प्रवचन भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो मैंने सीखा है अपने गुरु से उसे सुनो और उसे जीवन में उतारो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो प्रहलाद जी ने पिछले सातवें स्कंद में अपने सहपाठियों के लिए, अपने मित्रों के लिए बहुत अच्छा भागवत धर्म का उपदेश किया। प्रहलाद महान भक्त हैं, तो उनके मुख से जब उपदेश हुआ तो उन सभी बच्चों पर असर पड़ा, क्योंकि शुद्ध भक्त जब बोलता है तो उसकी वाणी का बहुत असर पड़ता है। इतना असर पड़ा कि जितने असुर बालक थे, असुर पुत्र थे, जो प्रहलाद जी के मित्र थे, वो सभी के सभी प्रहलाद जी के उस प्रवचन से सभी के सभी कृष्ण भक्त बन गए। जब कृष्ण भक्त बन गए तो उनके गुरु जी को बड़ा भारी चिंता हुई और बड़े भारी भयभीत हुए कि देखो इस प्रहलाद जी तो ये तो बिगड़ ही गया, इसने सारे बच्चों को विष्णु का भक्त बना दिया। और राजा ये सोचेगा कि मास्टर जी नहीं पढ़ाया होगा ऐसा, तो अब हमारी कुशल नहीं है। बहुत भयभीत हुआ तो उसने पहले से ही जाकर के राजा को बताया, महाराज देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा ही पुत्र प्रहलाद जी मेरे बहुत समझाने पर भी नहीं मानता, और यहां तक कि उसने सारे बच्चों को अपने जैसा ही कर लिया, वो तो बिगड़ा हुआ है ही, सारे बच्चों को बिगाड़ लिया उसने, सुधरे हुए को बिगड़ा हुआ बता रहा है वो, बोले सारे बच्चे बिगड़ गए, पता नहीं कैसा जादू डाल दिया उसने। जब ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी तो बहुत क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि अब उस दुष्ट बालक को स्वयं मैं ही अपने हाथों से मारूंगा। जबकि प्रहलाद जी को मारने के बड़े भारी उपाय किए गए थे, बहुत सारे सारे उपाय कर लिए थे, किसी उपाय से प्रहलाद जी का कुछ बाल बांका भी वो नहीं कर पाया। और उसने सुना के उस प्रहलाद जी ने उस मेरे बालक उस दुष्ट बालक ने, दुष्ट समझता था बालक को, बोले दुष्ट बालक ने सब बच्चों को बिगाड़ दिया, हाथ में तलवार उठाई और बड़े क्रोध से गए, मैं चलो मैं चलता हूं, मैं देखूंगा उस दुष्ट बालक को, और जाकर के उससे बड़ा क्रोध में कहा, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम शासन दूतम नैसे किम बलोतेगा, स्तब्धम बोले तो आदि यमक्षम, तो ये आज में यम के द्वार में पहुंचाऊंगा, क्या क्या कह रहा है अपने महान भक्त से, क्या बोले हे दुर्वनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, क्या क्या कह डाला, तू बहुत दुर्वनीत है दुष्ट है, और तेने सारे परिवार को तोड़ दिया, हमारे जो असुर परिवार है सबको बिगाड़ दिया तेने, आज तुझे आज तेरे लिए मैं ही यमक्षयम यम के द्वार मैं ही भेजूंगा। अरे तुझे पता नहीं किसके सामने खड़ा है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोक सहेश्वरा, यदि थोड़ा भी क्रोध करता हूं तो मेरे क्रोध की वजह से, थोड़े भी भौं टेढ़ी करता हूं, क्रुद्धस्य कंपन्ते, थोड़े क्रोध करने से कंपन्ते त्रयो लोक, तीनों लोक थर थर कांपने लगते, त्रयोलोक सहेश्वरा और लोकपालों के सहित, सहेश्वरा लोकपालों के सहित तीनों लोक थर थर कांपते थोड़ा सा क्रोध करने पर भी, और तत्समय अभी तो वत मूण शासनम किम बलोतेगा, और उसी के सामने अरे मूण अरे दुष्ट, उसी के सामने अभी तो वत एकदम निडर खड़ा हुआ है, किम बलोतेगा किसके बल पर, किसकी शक्ति है तेरे में जो तू डरता भी नहीं और मरता भी नहीं, किम बलोतेगा किसकी शक्ति है, किसका बल है तुझमें। प्रहलाद जी बोले महाराज किसका बल, हाँ बता जल्दी किसके बल पर तू न डरता न मरता है। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े हुए थे बड़े नम्र भाव से, पहले तो प्रहलाद जी ने कुछ समझाया, अरे दुष्ट बता तू किसके बल पर न मरता डरता, जल्दी बता शीघ्र बता। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी न केवलम मे भवता राजन सभी बलम बलिनाम चा परेशम परे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नबसं प्रणीतः। प्रहलाद जी बड़े नम्र भाव से बोले पिताजी न केवलम मे, केवल मुझमें ही बल, किसका बल मुझमें ही नहीं है, न केवलम मे भवतास राजन, हे राजन भव आप में भी उसी का बल है जिसका बल मुझ में है और उसी का बल आप में है। सभी बलम बलिनाम चाहे वो सभी बलवानों के बलवान, सभी बलवानों के बलवान श्री कृष्ण हमारे विष्णु हमारे प्रभु हैं, उन्हीं का बल आप में और उन्हीं का बल हम में, और इतना ही नहीं परे बरे में स्थिर जंगमाये जितने चर अचर प्राणी ब्रह्मादयो, ब्रह्मा आदि से लेकर जितने चर अचर प्राणी हैं सभी भी उन्हीं का बल है, उन्हीं का बल है। अच्छा उनका बल कहां है तेरा वो बता, तेरा भगवान है कहां जल्दी बता, अब उसी बलवान को देखूं मैं कहां है जल्दी बता। पिताजी कहां नहीं है वो, अच्छा ये खंबे में है, पिताजी वो खंबे में भी है, खंबे में भी है। जब ऐसे प्रहलाद जी ने कहा तो दुष्ट ने विचार किया मैं तो उसको ढूंढ ही रहा था विष्णु को,
क्योंकि मेरे भय से पता नहीं कहां कहां छुपा रहता है, कहीं मिलता ही नहीं, मैं तो ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तेने बता दिया, इस खंभे में तो देखता हूं तेरे भगवान को कितना बलवान है, एक घुसा दिया खंभे में, जैसे घुसा दिया उसमें खंभे में तो उसमें से बड़ी भारी आवाज आई, हूं, बड़ा भारी हुंकार आई, उनकी हुंकार से पृथ्वी हिल गई और सबके कान बहरे हो गए, सब भयभीत हो गए। वो दुष्ट समझ गया ये विष्णु बहरूपिया है ना, ये पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है, ये लगता है इसी खंभे में होगा, तो तलवार से खंभे को जैसे काटना चाहा उसी में से भगवान नरसिंह प्रकट हो चुके। बोल नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वो देख रहा, अरे ये क्या है, न मनुष्य है न शेर है न पशु है न मनुष्य है, ये तो बीच में ही है न मनुष्य है न पशु, बीच में ये क्या है, क्या बड़ा अद्भुत प्राणी है। हिरण्यकश्यप समझ गया ये विष्णु छलिया है और निश्चित रूप से मेरे मारने के लिए उसने ये सब माया रची है, माया भी तो है ही वो, पर वो जानता नहीं कि मैं उससे भी बड़ा मायावी हूं, उससे बड़ा बलवान हूं, मेरे सामने है क्या, वो ऐसे अपने को बड़ा भारी बलवान मानता था, वो असुर था ना, असुर बस अपना ही बल सबसे श्रेष्ठ मानते, स्वयं को भगवान बनते हैं वो। अब तलवार उठा करके भगवान को मारने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, गदा उठा करके, गदा युद्ध हो रहा है, भगवान ने उसे गदा सहित पकड़ लिया, गदा के सहित उसे पकड़ लिया और छटपटा रहा है, पर भगवान ने लीला करने के लिए उसे छोड़ दिया। इधर दिए बहुत सारे देवता, देवता अपने अपने विमानों पर ये देख रहे हैं, बड़ी भारी भीड़ लग रही है और बड़े भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, और ये पता नहीं ये तो भगवान से छूट गया लगता है, ये तो कहीं इसने हमको देख लिया तो भगवान को छोड़ के हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा ये, क्योंकि देवता बड़े भयभीत रहते थे, उसे बहुत भयभीत रहते थे, बड़े भारी भयभीत हो रहे हैं। इधर भगवान उसको खूब खेल खिला रहे हैं, नारद जी कहते हैं, क्यों नारद जी ये कथा कर रहे हैं, ये नारद जी उपदेश दे रहे हैं, बता रहे दुष्ट महाराज के लिए बता रहे हैं ये, तो नारद जी बोले कि भगवान ऐसे खेल खिला रहे हैं उन उस दुष्ट के लिए कि जैसे कभी बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है और फिर छोड़ देती है तो चूहा एकदम कूद के भागता है, मन हम छूट गए इससे, पर बिल्ली फिर पकड़ लेती है और फिर छोड़ देती है, उसके साथ खूब खिलवाड़ करती है, उसी तरह भगवान उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और फिर भगवान एक समय की भी प्रतीक्षा में थे कि धीरे धीरे वही समय आए, क्योंकि दुष्ट ने ऐसा वरदान मांग रखा है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर न भीतर, है ना, न अस्त्र से न शस्त्र से न मनुष्य से न पशु से, ऐसे ऐसे वरदान मांग रखे हैं इसने, मानो मृत्यु का दरवाजा ही बंद कर रखा हो इसने, ऐसे वरदान इसने मांग रखे हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सुविज्ञ है, सुराट सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है, भगवान वही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो शाम संध्या का समय है, संध्या मतलब दिन और रात जो संधि होती है, संध्या बोलते हैं जो पहर संधि होते हैं ना, जैसे जैसे दिन में जो दो पहर इकट्ठे होते हैं, दो पहर उसको संधि बोलते हैं, सुबह कोई संधि वो भी संध्या होती है, बोलते त्रसंध्या और त्रसंध्या। तो भगवान वो देख रहे शाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब संधि हो, न दिन हो न रात्रि हो, दोनों की संधि हो, तब इसे पकड़, तब इसे मारू। तो भगवान ने देखा कि अब वो समय आ गया है दुष्ट को मारने का, उसे पकड़ा और पकड़ के भगवान ने उसको खूब झकझोरा और अपनी गोद में बिठा लिया, अपने घुटनों पर उसे बिठा लिया। और भगवान बोले, दुष्ट अब मैं देखूंगा तेरे हृदय को फाड़ूंगा, तेरे हृदय कैसा पत्थर जैसा है, तेने इसने सुकोमल बच्चे को जो जो अपना आत्मज होता है, पुत्र आत्मज होता है ना, वो अपने रूप में पुत्र प्रकट होता है पत्नी से, उसे बोलते आत्मज बोलते हैं, तो जो आत्मज होता है उसके प्रति तेरा इतना कठोर हृदय, तेरा पत्थर से भी ज्यादा कठोर, तेरे हृदय को ही निकालूंगा पहले तो। तो भगवान ने अपने नाखूनों से, क्योंकि जो वरदान मांगे सारे पूरे कर दिए उन्होंने, भगवान ने बिठा लिया ऊपर और नाखूनों से उसके पहले हृदय को, छाती को चीरा और उसे हृदय को निकाल लिया। दुष्ट, तेरे हृदय तेरा बहुत, हृदय तेरा बहुत कठोर है ना, हृदय को निकाल के दूर फेंक दिया। हृदय को भगवान ने हृदय को निकाल के दूर फेंक दिया। तेरा कैसा हृदय है, ये हृदय देखने के लायक नहीं है तेरा हृदय। जो सुकोमल बच्चों कितना तेने कष्ट दिया है। फिर भगवान ने उसके हृदय को दूर फेंक के फिर उसकी सारी आंतों को निकाला और आंत निकाल के गले माला डाल दी, गले में माला की तरह डाल दिया आंतों को। भगवान का बड़ा विकराल रूप हो रहा है। एक तो उसकी आंतें गले में माला की तरह पड़ी हैं, भगवान के गले में है ना, उसकी आंतें माला की तरह पड़ी हुई हैं और उसके खून से भगवान का जो मुख है, भगवान की हाथ, भगवान के मुख इत्यादि बाल सब खून से भीगे हुए हैं और भगवान नरसिंह की आंखें इतनी 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 तेज है, इतनी तेज हैं कि दिन का तेज फीका कर दिया और भगवान के बाल इतने सोने की तरह, सोने की तरह भगवान के बाल चमक रहे हैं, बड़ा दिव्य तेज है और आंखों की दृष्टि से देखते ही सबको भस्म कर देंगे क्या। अब बहुत सारे असुर आए तो भगवान ने सभी असुरों को, क्योंकि जो जिस उसके जितने सैनिक थे ना वो भी बड़े दुष्ट थे, उन सभी असुरों को भगवान ने मार दिया। सबको मार के भगवान ने देखा कि थोड़ा बैठने के लिए आसन, तो गणेश जी उसी के आसन पर बैठ गए, कूद के, उसका बड़ा अच्छा सिंहासन था, उसके सिंहासन पर बैठ गए और बड़े भारी क्रोध में। अब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यप पूरी तरह से मरा है कि नहीं मरा है, जब उनको ये पूरा विश्वास हो जाए मर गया तभी जाएंगे वहां, नहीं तो फिर पता नहीं ये कहीं हमको फिर ना कोई तकलीफ दे। देवता डरते 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 देवता वो भी ब्रह्मा जी को आगे कर गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो भक्त था ना, वो भी ब्रह्मा जी को आगे, मुख्य देवता पहले आगे, ब्रह्मा शिव और इंद्र, बाकी और बहुत सारे देवता अब भगवान के पास स्तुति करने के लिए आए। सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान उग्र रूप नरसिंह के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बड़ा बड़े भयभीत हो रहे हैं क्योंकि भगवान का इतना भयावना रूप है, उसको देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे हैं पर हाथ जोड़ करके कांपते कांपते भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विषय चल रहा है ये सभी देवी देवता सिद्ध चरण सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो पहली स्तुति ब्रह्मा जी ने की, बोले न तो अस्मि न तो अस्मनंताय दुरंति सकते विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे स्वलीलया संधते अव्यय आत्मने। ब्रह्मा जी बोले न तो अस्मि अनंताय विचित्र वीर्याय दुरंति सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हे प्रभु आप अनंत हैं, आपका कोई अंत पा ही नहीं सकता, दुरंत्य सकते और आपकी शक्ति का तो कोई पारावार है ही नहीं, और विचित्र वीर्य है हे प्रभु आपकी जो वीरता है वो बड़ी अद्भुत वीरता है, पवित्र कर्मणे और आप जो भी कार्य करते हैं अपने भले इसकी आंत को निकाल के गले में डाल लिया, खून से लथपथ हो रहे हो लेकिन पवित्र कर्मणे अब जो भी कार्य करते हो एकदम सब पवित्र होता है प्रभु। अरे आप ही तो इस संसार के भौतिक गुणों को, रजोगुणों तमोगुणों, इन तीनों को धारण करके और आप ही तो संसार की सृष्टि और पालन संहार करते हो प्रभु, स्वलीला अपनी लीला से ही करते हो, ये इस संसार को बनाना और इसकी रक्षा करना और बिगाड़ना आपके तो केवल संकल्प मात्र का ही खेल है, स्वलीला लीला मात्र का ही खेल है, अपनी लीला से ही संसार को रचते हो और संकल्प से ही सबको विनष्ट कर दिया, ये तो क्या चीज है हिरण्यकश्यप। हे प्रभु हे अनंत मैं आपके चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, हे प्रभु थोड़ा शांत हो जाओ। अब भगवान नृसिंहदेव बहुत क्रोध होकर के देख रहे हैं, ये सब वरदान तैने दिए थे उसको। भगवान मन में ही सोच रहे हैं सारे वरदान तैने दिए हमको, हमारे आगे आगे प्रार्थना कर रहा है। और क्रोधित होने लगे, ब्रह्मा जी साइड हो गए, लगता है तो भगवान हमारी बस की बात नहीं, भगवान शांत हो जाए। भगवान शिव को सारा गया, प्रभु अब तो वैष्णवाना में था संभव, आप कृपा करो। तो भगवान शिव जी आए और बोले, प्रभु को पकालो युगो युगांतस्ते, को पकालो युगांतस्ते हतो अयम असुर असुर अल्प अल्प अल्पकः हतो अयम असुर अल्पकः तस्सुतम पाहे उस उपसृतम भक्तम ते भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल, हे प्रभु, आप इतने क्रोध में हो, आप कितने उग्र रूप में, कितने क्रोध में हो प्रभु, और आपका इतना क्रोध करने का समय अभी तो आया नहीं है। युगांतस्ते, जब कल्प का अंत होता है, कल्प का अंत करने के लिए, सबका विनाश करने के लिए, उस समय आपका ऐसा क्रोध होता है। आपने ऐसा क्रोध ऐसा किया है मानो युग का अंत करने वाला क्रोध आपने अभी प्रकट कर दिया। प्रभु इतना क्रोध करने की आपको तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने दुष्ट को मारने के लिए क्या हतो अयम असुर अल्पकः, और इस असुर को मारने के लिए ये असुर क्या अल्पकः, तुम्हारे सामने है ही क्या, तुच्छ है तुम्हारे सामने, तो हतो अयम ये तो मारा जा चुका है ना। प्रभु तत्सुतम पाहे उपसुतम, जो आपका शरणागत भक्त है उसका पुत्र वो आपके पास में खड़ा है, प्रभु उस पर कृपा करो, शांत हो जाओ। भगवान शिव ने खूब बढ़िया स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने उत्तम श्लोक से स्तुति की, भगवान शिव ने बड़े भाव से स्तुति की, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध और बढ़ता ही जा रहा है, क्रोध कम नहीं हो रहा। भगवान शिव भी साइड हो गए, पता नहीं प्रभु की क्या लीला है, भगवान शिव भी साइड हो गए। अब इंद्र जी आए, इंद्र आकर के भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इस दुष्ट को मार दिया, अरे इस दुष्ट ने तो हमारे यज्ञ का भाग सब यही खा जाता था, जितने भी यज्ञ होते थे और उन यज्ञों से हमारी पुष्टि होती थी, जो भी यज्ञ होते सब भाग को यज्ञ का भाग यही खा जाता, हमारे तक तो एक कण भी नहीं, एक कण तक नहीं पहुंचने देता प्रभु, हम तो तब से भूखे ही मर रहे हैं। आपने बड़ी भारी कृपा की, बहुत अच्छा आपने हमारे ऊपर उपकार किया, दुष्ट को मार दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु। पर भगवान तो शांत नहीं हो रहे, अब वो इंद्र भी स्तुति करके वो भी साइड हो गए। जब इंद्र साइड हो गए और इंद्र ने यहां तक कहा कि प्रभु अरे देखो आपने बड़ी भारी कृपा की है, जिस दुष्ट को मार दिया है, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, जो आपके भक्त हैं, आपके भक्त आपके चरणों को प्राप्त करने के सिवाय, आपकी प्राप्ति के अलावा वो चारों पुरुषार्थ क्या क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का त्याग कर देते हैं। न नाक पृष्ठम, न च पारमेष्टम, न सार्वभौम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम, वांछन त्यत्पाद रजः प्रपन्नः। अरे जो भक्त आपके चरणों की रज को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल आपकी जो भक्ति चाहते हैं, वो ब्रह्मा जी की पदवी तक नहीं चाहते, और स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, पाताल लोक का भी राज्य नहीं चाहते, इस भूमि पृथ्वी लोक का भी साम्राज्य नहीं चाहते, यहां तक कि रिद्धियां सिद्धियां भी नहीं चाहते, अरे और तो और छोड़ो मोक्ष भी नहीं चाहते। प्रभु आप तो भक्त वत्सल ही हैं, आपने बड़ी भारी कृपा की, इस दुष्ट को आपने मार दिया, अब हम बस सुखी हो गए। इंद्र ने खूब स्तुति की, इंद्र भी थोड़े साइड हो गए, क्योंकि भगवान तो प्रसन्न है ही नहीं रहे, बड़े क्रोध में उग्र रूप में बैठे हुए हैं। अब ऋषि आए, सब लोग ऋषि आकर के वहां प्रणाम किया, प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की, दुष्ट को मार करके हमारे ऊपर तो बड़ी भारी कृपा की, क्यों, क्योंकि आपने ऋषियों के लिए तपस्या बताई है ना, भक्तों के ऋषियों के लिए, इस दुष्ट ने हमारी तपस्या में ही बाधा दे दी, हमारी तपस्या को ही रोक दिया,
प्रभु आपने बड़ी भारी भक्ति, बड़ी भारी कृपा की, अब हमारी तपस्या फिर पुनः शुरू हो जाएगी। ये दुष्ट ने हमारी तपस्या को रोक दिया था, हम तपस्या कुछ नहीं कर पाते थे प्रभु, अब आपने इसको विनष्ट करके अब हमारी तपस्या में आपने शुरू करने के लिए बहुत सहायता की प्रभु। तो ऋषि लोग भी इस प्रकार वो स्तुति करके हट जाते हैं, और पितर लोग आते हैं, पितर लोग, प्रभु प्रभु कितनी आपने कृपा की हमारे ऊपर, तो बहुत ज्यादा कृपा की, हम तो भूखे ही प्यासे ही मर रहे थे, हम तो भूखे और प्यासे मर रहे थे, क्योंकि हमारे पुत्र जब श्राद्ध के समय कुछ श्राद्ध करते थे तो ये छीन के स्वयं खा जाता था, हमारे पास तक एक कण तक नहीं आने देता था। और जब हमारे पुत्र कहीं तीर्थ स्थलों में जाकर के कुछ तिलांजलि अर्पित करते थे, जल अर्पित करते थे, जल भी छीन लेता, हमको एक बूंद जल की भी नहीं मिलने देता था प्रभु। हम तो भूखे और प्यासे मर रहे थे, अपनी बड़ी भारी कृपा की, इस दुष्ट को मार दिया, तो अब बस हमको खूब सुख प्रदान कर दिया प्रभु आपने। अब वो भी थोड़ा सैड हो जाते हैं। अब नंबर आता है सिद्धों का। सिद्ध बोले प्रभु कितनी भारी कृपा की आपने दुष्ट को मार करके, अरे हम तो सिद्ध लोक के वासी हैं, अष्टांग योग की सिद्धियां में स्वतः ही प्राप्त हैं, पर दुष्ट ने सारी सिद्धियों पर स्वयं ही कब्जा कर लिया, हमको सिद्धियों से रहित कर दिया इसने। अब आपने बड़ी भारी कृपा करके प्रभु बस हमारा अधिकार हमको दिला दिया, ये बड़ी भारी कृपा की है प्रभु, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो सिद्ध लोग भी भगवान से प्रार्थना करके नमस्कार करके वो भी हट जाते हैं। अब विद्याधर प्रकट होते, विद्याधर आए सामने और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने कितनी भारी कृपा की है, ये दुष्ट का विनाश करके हमारे ऊपर तो बड़ा भारी कृपा की है, क्योंकि जो हमारी प्रकट और अप्रकट होने की जो शक्ति थी ना, इस दुष्ट ने सारी छीन ली थी, जो प्रकट होने की और अप्रकट होने सारी शक्ति इसने छीन ली थी प्रभु, अब आपने हमारा अधिकार हमें दिला दिया, बड़ी भारी कृपा की, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तो सिद्ध लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, वो भी एक साइड हो जाते हैं। अब विद्याधर, अब नागों का नंबर आया, नाग भगवान के सामने आके प्रणाम करते, प्रभु प्रभु आपने हमारे ऊपर कितनी भारी कृपा की दुष्ट को मार करके, अरे दुष्ट ने हमारा सर्वस्व छीन लिया, हमारी जो मणि है ना, मणि सारी मणि इसने छीन ली, और यहां तक हमारी सुंदर पत्नियों को भी इसने अपने कब्जा में कर लिया, हमारी मणि छीन ली, हमारी पत्नियों को छीन लिया, प्रभु हमें बड़ा भारी कष्ट दिया है, अब प्रभु आपने हमारी संपत्ति हमें वापस करा दी, हमारी पत्नियां हमको वापस करा दी, हमारी मणि हमको वापस करा दी, प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की है, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तो नाग लोग के जो नाग थे ना, वो भी भगवान की स्तुति करके वो भी सैड हो जाते हैं, पर भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, एकदम उग्र रूप में आते जा रहे हैं भगवान। अब मनुओं ने कहा, मनुओं ने, प्रभु हम सभी मनु आपकी आज्ञा से ही इस संसार की व्यवस्था करते हैं, आपकी आज्ञा से ही, और हमने जो भी नियम बना रखा वर्ण आश्रम का ना, वो सब नियम भंग कर दिया इसने, जो हमने नियम बना रखा था वर्ण आश्रम धर्म का सारे धर्म सब नियम इसने भंग कर दिए प्रभु, अब आपने बड़ी भारी कृपा की दुष्ट को विनाश कर दिया, दुष्ट का नाश कर दिया प्रभु, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। अब नंबर आया प्रजापतियों का, जो प्रजापति हैं, प्रजापति आकर के भगवान को प्रणाम करते, प्रभु आपने दुष्ट को मार करके हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा की, अब हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। बोले क्या? बोले प्रभु आपने हमको आदेश दिया था कि सृष्टि की रचना करो और उत्तम संतानें उत्पन्न करो, तो प्रभु उत्तम संतान उत्पन्न करने का इसने हमारा प्रयास ही रोक दिया, हमको उत्तम संतानें करने से ही रोक दिया प्रभु, अब प्रभु आपकी कृपा से हम पुनः आपकी सेवा में लग जाएंगे। इस तरह से प्रजापति भी, प्रजा जितने प्रजापति थे, भगवान की प्रार्थना करके अब वो हट जाते हैं। अब गंधर्व लोग आते हैं, प्रभु कितना आपने बढ़िया उपकार किया हमारे ऊपर, प्रभु हम तो आपको नाच करके गा करके आपकी प्रसन्नता के लिए आपको रिझाते थे, और इस दुष्ट ने
ऐसा आतंक मचा दिया कि इसने हमको बंदी बना लिया और कहता है कि हमारा गुणगान गाओ, हमारा कीर्तन करो, हमको प्रसन्न करो नाच करके। तो प्रभु ये हमें सबको अपने सामने खूब नचवाता था, खूब नचाता था और कहता हमारे गुण गाओ। तो प्रभु अब आपने बड़ी भारी कृपा की, इस दुष्ट से हमको मुक्त कर दिया। इधर चारण आए, चारण बोले प्रभु इस दुष्ट को मार के आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये दुष्ट ऐसा दुष्ट था, इस दुष्ट की वजह से सबके हृदय में आतंक मचा हुआ था, सब बहुत दुखी थे, सबके हृदय कंपायमान दुखी आतंकित रहते थे। अब आपने दुष्ट आतंकी को मार करके और सबके हृदय के आतंक को शांत कर दिया, प्रभु हम आपके चरणों बार बार प्रणाम करते हैं। और आज का श्लोक है, आज के श्लोक कौन बोल रहे हैं, यक्षा उचुहु, यक्ष लोग बोल रहे हैं, यक्ष कह रहे हैं प्रभु, नहीं यक्ष, हाँ यक्ष बोल रहे हैं ना, यक्ष उचु है, हाँ यक्ष बोल रहे हैं प्रभु, वयम अनुचर मुख्या कर्म भिस्ते मनोज्ञी स्तः दित सुतेन प्राप्यता बाहकत्वं सतु जन परितापम तत्कृतम जानता ते नरहर उपनीत पंचतम पंचविश। यक्षलोक बोले प्रभु, यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की कि हे 24 तत्वों के नियामक, हम आपको बहाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं, फिर भी द्वितीय पुत्र हिरण्यकश्यप के आदेश पर बोले हम आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। यक्षलोक बोले आपकी सबसे उत्तम सेवा करते हैं और फिर भी इस दित पुत्र हिरण्यकश्यप के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता है। प्रभु ये इसने तो हमको अपना सवारी बना रखा है, पालकी ढुलवाता है हमसे, और जबकि हम कितने उच्च श्रेणी के हैं और आपकी सबसे उच्च सेवा करते हैं और ये हमसे पालकी ढुलवाता है। प्रभु हे नृसिंह देव, आप यह जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचा है, क्योंकि आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों मिल गया, पंच तत्व में मिल गया, तो ये आपने बड़ी भारी कृपा की। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमेश्वर 24 तत्वों के नियामक हैं, 24 तत्वों के। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 24 तत्व क्या हैं, दस इंद्रियां हैं और पांच भौतिक तत्व, समझते हैं भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और क्या रह गया, आकाश। थोड़े बोले 10 इंद्रियां और ये पांच भौतिक तत्व, 15 हो गए ना, और ये पांच इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, तो चाहे स्पर्श में आ गया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, बोले ये पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, और कितने हो गए, पांच और दस बीस हो गए ना, और आगे बताते मन बुद्धि अहंकार तथा आत्मा कितने हो गई है, 24 हो गए। 24 तत्वों के नियामक प्रभु आप हैं, क्यों 25 में फिर भगवान हैं सबके नियामक। तहसील प्रभा जी कहते हैं कि परमेश्वर 10 इंद्रियों, पांच भौतिक तत्वों, पांच इंद्रियों, मन बुद्धि अहंकार तथा आत्मा के नियामक हैं, अतएव उन्हें पंचविश अर्थात 25वां तत्व कहा गया है। किसके लिए, भगवान को 25वां तत्व कहा गया है। तो यक्षलोक के निवासी समस्त सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु हिरण्यकश्यप उनसे पालकी ढुवाता था। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की, जो दुष्ट का विनाश कर दिया, क्योंकि हमें तो ये पालकी में लगा देता था। तो इस तरह से सभी देवों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, यक्ष चारण सिद्ध इत्यादि, नाग इत्यादि सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार भगवान की प्रार्थना की, लेकिन भगवान अभी उग्र रूप में ही हैं, है ना। तो जो प्रसन्न नहीं हो रहे, यहां तक कि लक्ष्मी तक को भेजा, वहां आगे आएगा, लक्ष्मी तुम ही जाओ भाई, तुम्हारे प्रियतम हैं, तुम उनकी प्रिया हो सकता है कि, क्योंकि पुरुष कितना ही क्रोध में हो, जब श्रीमती जी सामने जाती है सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। हो सकता है कि आप जब सामने जाएंगी तो हो सकता है शांत तो हो जाए। पर लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी ने देखा तो उसमें भगवान ने और गहरा हुंकार सी मार दी। लक्ष्मी डर गई, पीछे गिर पड़ी, कांप गई, बोली देवता हो तुमने कब का भैर मेरे उसे निकाला है, जो ताव तुमने शेर के आगे मुझे भगवान को भेज दिया। अरे मेरे प्रभु, मैंने अपने प्रभु का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। कैसा रूप देखा? बोले शांताकारम भुजंग सैनम पद्मनाभ्यम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम, फिर क्या आगे, सर्वलोक महेश्वरम। मैंने तो मेरे प्रभु शांताकारम भुजंग सैनम, ऐसे प्रभु की सेवा की है, जाके चरणों की सेवा, एकदम शांत हो, तुमने मुझे शेर के आगे मरवाने को भेज दिया, कब का बैर निकाला तुमने। तो लक्ष्मी जी देवताओं को फटकार के पीछे हट जाती हैं। तो आगे वर्णन आएगा कि अब देवता बड़ी भयभीत, भगवान और क्रोध में आते जा रहे हैं, कैसे भगवान का क्रोध शांत हो। तो सबने विचार किया, विशेषकर भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान भक्त वत्सल हैं, और जिनके कारण भगवान इस उग्र रूप में आए, जिनके कारण, जिनके लिए ये भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया है, और सिर्फ बड़ा भारी क्रोध में आए, जिसके कारण भक्त प्रहलाद के लिए ही, तो उन पर कृपा करने के लिए यदि आप इन भक्त को उनके पास भेज दोगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी देवताओं ने प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी देखो तुम्हारे ही कारण प्रभु ने ये रूप धारण किया है, आप जाओ ना, निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। पर भक्त निडर होते, प्रहलाद जी ने देखा भगवान का रूप ऐसा उग्र, पर बिल्कुल उनके मन में भय ही नहीं आया, निर्भय होकर के भगवान के पास पहुंचे। छोटा सा बालक, 5 साल का था ना, छोटा सा बालक, और भगवान थोड़ा प्रहलाद जी पास में जाकर के जब से पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाह रहे, बोले क्या, क्योंकि कोई अच्छे गुरुकुल नहीं पढ़ते तो कोई स्तुति कर उनको, कोई उत्तम श्लोकों से स्तुति कर सके भगवान की, है ना। तो बोले क्या, भगवान ने देखा कि समझ गए भगवान, भगवान ने अपना कर कमल और प्रहलाद जी के ऊपर रख दिया। और ऐसा लिखा है नरसिंह पुराण में, भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी, प्रहलाद मुझे क्षमा करना जो मेरे आने में विलंब हुआ है, क्योंकि तुम्हारे सुकोमल शरीर पर कितने कितने कष्ट दिए, इस कष्ट के लायक तुम नहीं थे, और दुष्ट ने तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए, मेरे आने में जो विलंब हुआ है उसके लिए क्षमा करना। तो अब प्रहलाद जी कह रहे प्रभु शांत हो जाओ। प्रहलाद जी बहुत सुंदर स्तुति की है, बोले ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोथ सिद्धा, ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान मतयो बच सांप्रवाही नाराधितो पुरुगणै अधुना पिप्रहो किं तुष्टुम अरहति समे हरिरुग्रजातः। उग्रजातः, प्रभु मैं तो उग्र परिवार में, ऐसे असुर परिवार में प्रकट हुआ बालक हूं, क्या आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाओगे प्रभु। ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मा आदय सुरगणा, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा आदि जो सत्वे के तान मतयो, जो हमेशा शतोगुण में रहते हैं, मैं तो एक तमोगुणी जीव हूं, असुर कुल का बालक हूं। ब्रह्मादय सुरगणा जो हमेशा सतोगुण में रहते हैं, और उत्तम उत्तम श्लोकों से आपकी स्तुति की है प्रभु, और आपकी उत्तम उत्तम श्लोकों की स्तुति करके अब तक आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो क्या प्रभु आप मेरी स्तुति से, जो मैं असुर कुल में तमोगुण रूप में, तमोगुण परिवार में, असुर कुल में प्रकट हुआ हूं, जो हमेशा तमोगुण में रहता है असुर कुल, तो ऐसे परिवेश में प्रभु मैं प्रकट हुआ हूं, तो क्या आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, ये बड़ी सुंदर कथा आएगी आगे। तो इस तरह से ये भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया है, और समय हो गया ही, हम वाणी को विराम देते हैं, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि भागवतम की, शिल्पोपाद की।